हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मेरी बहन जहाँ भी रहेगी खुश रहेगी। हो सकता है उसकी किस्मत में शादी लिखी थी। मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ मेरा प्यार था। इनफैक्ट मैं सिद्धार्थ को बहुत प्यार करने लगी थी। पर कहते हैं ना कि कुछ प्यार की मंजिल होती है, प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। शायद मेरी जिंदगी में भी यही लिखा हुआ था। मेरी किस्मत में मेरे प्यार को मंजिल नहीं मिलने थी, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अब मैंने इसे अपने नसीब समझकर कबूल कर लिया है। मैं अपनी बहन और मिस्टर सिद्धार्थ खुराना से किसी तरह का कोई सवाल नहीं करना चाहती, और ना ही मुझे इस बात को लेकर किसी तरह का दुख है। और वो रोते हुए बोली, मैंने उन्हें माफ कर दिया है। ये बोलकर अब आकांक्षा ने पूरे तरीके से मामले को संभालते हुए सिद्धार्थ और उसके खिलाफ परिवार पर एक एहसान सा कर दिया था। वहीं सोशल वर्कर अब आकांक्षा को इस तरह बर्ताव देखकर थोड़ा सा नाराज हुए। उन्होंने सोचा था कि वे आकांक्षा का प्रयोग करेंगे और खुराना परिवार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ आकांक्षा की स्टेटमेंट ने उनका पूरा प्लान चौपट कर दिया। उन्हें आकांक्षा पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन साथ ही ये भी समझ रहे थे कि अगर आकांक्षा खुराना परिवार के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा भी देती या कुछ कर भी देती तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सिद्धार्थ खुराना एक पल में सब कुछ बर्बाद कर देगा और कितने लोगों को गायब करवा देगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाएगा। अगर उसे अपने प्यार की ज़िंदगी में जाना है तो प्यार और मोहब्बत से ही जाना होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं जा सकती। अब जानबूझकर आकांक्षा ने ये विक्टिम कार्ड प्ले किया कि सोशल मीडिया पर और सोशल वर्कर और सभी मीडियाकर्मी उसे दर्द में देख सकें। लेकिन सोशल वर्कर वहां से खाली हाथ नहीं जाने वाले थे। उन्होंने तुरंत आकांक्षा का हाथ पकड़कर बोला, आकांक्षा, आप हमें चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन हम किसी के साथ ऐसा अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आपकी तरफ से प्रोटेस्ट हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, डोंट वरी। ये बोलकर वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आकांक्षा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। यही तो वो चाहती थी, लोगों को पूरी तरह से विक्टिम समझे और प्रोटेस्ट करें। अगर आकांक्षा ये करती तो सीधे सिद्धार्थ के दुश्मनों की लिस्ट में उसका नाम ऐड हो सकता था, और आकांक्षा चाहती थी कि सिद्धार्थ उसका पति बने, उसके दुश्मन नहीं। फिलहाल नैना ओबेरॉय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बच्चों का सामना करे। अपने बच्चों को अपनी जिंदगी का काला सच बता दिया था, लेकिन चाहकर भी उनके करीब नहीं जा पा रही थी। आकांक्षा और वैभव दोनों ने ये महसूस कर लिया था, लेकिन अभी वे उनके पास जाने से बच रहे थे। उन्हें अजीब फीलिंग हो रही थी कि उनकी माँ के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और वो इस तरह की शिकार हो गई। वे दोनों अभी इसके ऊपर बात करने से बच रहे थे। नैना इस वक्त कमरे में पूरी तरह रो रही थी। ईशान उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। नैना रोते हुए मायूस होकर बोली, मैं इसीलिए सारा सच अपने परिवार को नहीं बताना चाहती थी। मुझे पता था कि मेरे बच्चे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, मेरे बच्चे मेरे साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हैं। एक बार भी मेरे बच्चों ने मेरे लिए दो शब्द नहीं बोले। उन्हें लगा कि सारी गलती मेरी ही है। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ उनके भविष्य के लिए किया। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे राज परिवार जैसी जिंदगी जी सकें, ताकि उनके जीवन में किसी तरह की कमी ना हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं नैना को अपने दिल में खालीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उसके बच्चों ने उसे बड़ी नीची नजरों से देख रहे हैं। तब ईशान नम आंखों से बोला, ताहर, मुझे एहसास है कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मैंने पूरे 3 दिनों तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस के अधिकारी भी पीछे लगाए थे, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया। आज भी मुझे इसका पूरी तरह अफसोस है। दोनों पति पत्नी के दिल में खालीपन बन गया कि उनके बच्चों ने इतनी बड़ी बात जानने के बाद उन्हें लेकर कोई बड़ा कंसर्न नहीं दिखाया। वहीं दूसरी ओर दादी इस वक्त टीवी के सामने बैठी हुई थी। पूरे शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। सोशल वर्कर अपने महिला संगठन की सभी औरतों को इकट्ठा करके प्रदर्शन करा रही थीं। सभी में केवल एक ही बात कही जा रही थी, अमीर लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। किसी औरत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिद्धार्थ खुराना, माफी मांगो। झलक ने देखा कि दादी टीवी देख रही थीं। टीवी में चल रही न्यूज देखकर वो हैरान हुई और बोली, ये सब क्या हो रहा है दादी? दी। तब दादी ने झलक को देखते हुए फटाफट टीवी बंद कर दिया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रसिद्ध परिवार के लोगों के साथ तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तुम फ़िक्र मत करो, एक दो दिन ये लोग चिल्लाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वरना सिद्धार्थ तो है, वो सब संभाल लेगा। ये देखकर झलक को काफी हैरानी हुई। फिलहाल वो दादी से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। उसने देखा कि रणविजय भी आसपास नहीं था। तब दादी के हल्की फुल्की बातें करने के बाद झलक ने दादी के हाथ पकड़कर बोला, दादी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये सुनकर दादी बोली, हाँ मेरी बच्ची, पूछो। तुम कब से कुछ बोलने से पहले पूछने लगी? बोलो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। झलक बोली, दादी, मैं जानना चाहती हूँ कि मिस्टर रणविजय खुराना और मिस्टर सिद्धार्थ के बीच क्या हुआ है? क्या इनके बीच कुछ हुआ है? क्योंकि जब मैं उन्हें देखती हूँ तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं, एक दूसरे को दुश्मन जैसी नज़र से देखते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे पूछ लूँ। ये सुनकर दादी के सामने कुछ धुंधले दृश्य आने लगे और वो दृश्य देखकर दादी ने तुरंत अपनी आँखें बंद कर लीं। खुद को शांत करते हुए उन्होंने कहा, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर दादी अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करते हुए कमरे में चली गईं। वहीं झलक को हैरानी हुई कि उसने आखिर ऐसा क्या पूछ लिया जो उसके सवालों का जवाब नहीं मिला, और दादी बिना कुछ कहे कमरे में चली गईं। झलक को लगा कि जरूर कुछ बड़ा मसला है जिसे दादी या कोई और उससे शेयर नहीं करना चाहता। फिलहाल झलक ने सोचा कि अब वो अपने कमरे में अकेली बैठकर क्या करे। रणविजय के बारे में जानकारी लेने का कोई रास्ता नहीं था और सिद्धार्थ उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। झलक ने सोचा, क्यों न रणविजय से ही सीधे सीधे बात कर लूं? आखिरकार वो मेरी जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ कैसे कर सकता है? वो चाहता क्या है? क्यों मेरी जान लेना चाहता है? फिलहाल वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना हॉस्पिटल पहुंच चुका था। रौनित की स्थिति काफी बुरी थी। उसके बॉस ने साफ साफ कहा था कि बिना सिद्धार्थ के वहां आए वो लोग सोने नहीं चाहिए, लेकिन जब तक सिद्धार्थ पहुंचे वे गहरी नींद में सो चुके थे। अब उन्हें एकदम से होश में लाना काफी मुश्किल था। सिद्धार्थ का गुस्सा इस बात से काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने रौनित से कहा, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि उन्हें किसी भी तरह जगा कर रखना है, तो ये लोग सो कैसे गए? ये सुनकर रौनित थोड़े डर में था, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता था कि सिद्धार्थ इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी बीमार आदमी को नींद से कैसे जगाया जाए और पूरी स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाए। तब डॉक्टर वहां आए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ सर, हमने सारी सिचुएशन समझ ली है, आप परेशान मत होइए, बस हमें कुछ समय दीजिए। ये बोलकर डॉक्टर अंदर चले गए और लगातार कुछ इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए ताकि वे एक बार फिर से होश में आ सके। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा इस वक्त ब्लैक जीन्स और हुडी पहनकर चेहरे पर मास्क लगाए हॉस्पिटल में मौजूद थी। उसे पहले ही पता चल चुका था कि सिद्धार्थ खुराना इस वक्त कहाँ है और क्या करने जा रहा है,
और उसे ये भी पता चल चुका था कि सिद्धार्थ डेस्परेटली उन दोनों से सवाल जवाब करना चाहता है। अगर सिद्धार्थ के सामने उसका सच आ गया, उसका नाम आ गया, तो उसने जो चाल चली है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस बार आकांक्षा पूरी तैयारी के साथ सिद्धार्थ के जिंदगी में एंट्री लेना चाहती थी, इसीलिए देर न करते हुए वो फटाफट से हॉस्पिटल जा पहुंची थी। क्या चाल चलेगी आकांक्षा, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।